ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, 29वें संयुक्त राष्ट्र वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद CK वार्ष्णेय, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमरीश सक्सेना।
COP29 शुरू हो रहा है और ऐसे में जो क्लाइमेट से पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं वो हमारे सामने फिर से आ गए हैं और हम सभी को ये जानने की और समझने की जरूरत है कि ये जो पर्यावरण में परिवर्तन है ये क्या है और ये किस तरह से हमको प्रभावित कर रहा है। और जो COP29 है इसमें कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की जाएगी, और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रमुख पर्यावरणविद CK वार्ष्णेय जी। वार्ष्णेय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद
वार्ष्णेय जी। चलते हैं COP29 की बात करते हैं। ये सम्मेलन अजरबैजान की बाकू में शुरू हो रहा है और इस सम्मेलन में पर्यावरण से जुड़े बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होनी है, तो कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताने की कोशिश करें कि ये सम्मेलन क्या है, क्यों शुरू हुआ और इस सम्मेलन में क्या क्या ऐसी प्रमुख गतिविधियाँ हैं जो हो रही है।
देखिए, अजरबैजान में जो बाकू के अंदर जो सम्मेलन हो रहा है वो अपनी श्रृंखला में तीसरा है। 3 दशक से पर्यावरण परिवर्तन के ऊपर चर्चा जारी है और जब ये शुरू हुआ था जब से और आज तक हमारी चिंताएं बढ़ी हैं और ये निरंतर बढ़ती रही हैं। बाकू में जो सम्मेलन है ये हमें समझना चाहिए कि ये एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें सारे दुनिया के देश मिल करके ये विचार करते हैं कि किस प्रकार हम पर्यावरण परिवर्तन को कंट्रोल में ला सकते हैं और कितनी हमने इसके ऊपर प्रगति की है और कहां कहां कमी है और क्या और नई योजनाएं और क्या नई युक्तियां की जा सकती हैं जिससे कि पर्यावरण परिवर्तन के दशा में और उसकी गति में कमी लाई जा सके और हर तरीके से जीव जंतुओं को और हमारे समाज को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। मैं इसके पृष्ठभूमि के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं
जी।
जो क्लाइमेट कन्वेंशन 1992 में हुआ था ये उसके तहत ये मीटिंग हो रही है जहां पर दुनिया के समस्त देश जो कि परिवर्तन के बारे में चिंतित हैं वो मिलते हैं और हर साल ये प्रोग्रेस और उसकी समीक्षा करते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी इस साल की जो दिक्कत है या समझते हैं जो इश्यू है वो ये है कि हमारे ट्रम्प साहब के इलेक्शन में जीत जाने से जिस तरीके से वहां पर बड़े जो लीडर्स हैं उनके अंदर एक तो कमी आई है, वो बहुत सारे लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से कि वहां पर जो एक निर्णायक असर पड़ना चाहिए उसके अंदर थोड़ी सी कमी का अनुभव हो सकता है।
एक चीज मैं यहाँ से जानना चाहूंगा, जैसे जो ये कॉप की हम बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है, जो संबंधित पक्ष हैं उनका सम्मेलन है, तो ये सिर्फ अपनी तरह का अलग सम्मेलन तो है ही, लेकिन इसके अलावा जैसे आपने विश्व स्तर पे बात की और ट्रम्प का जिक्र किया, तो बहुत सारे और भी ऐसे संगठन है विश्व में जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, खासतौर से अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, तो ये जो दुनिया में अलग अलग स्तरों पर सारी गतिविधियां हो रही हैं पर्यावरण से संबंधित, उससे और इस सम्मेलन में किस तरह का संबंध है?
देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह भी सब इसी के अंतर्गत हुआ करते थे लेकिन अब वो दिशा बदल गई है और हम इवॉल्व कर गए हैं और मुद्दे और गहराए गए हैं और कठिन हो गए हैं और जटिल हो गए हैं। तो इन सब समस्याओं के पृष्ठभूमि में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब पिछली दफे प्रेसिडेंट ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उस वक्त उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया था
जी।
ऐसा उनका मानना था कि ये कोई समस्या नहीं है और बल्कि ये एक ऐसी समस्या है जिससे बातचीत ही बातचीत है और इसका कोई ठोस निदान नहीं है और वास्तव में ये समस्या ही नहीं है, और इसकी वजह से वो उसमें से निकल गए थे। उसके बाद 4 साल बाद जब फिर से वो अपने जीत करके आए हैं तो लोगों को ऐसी आशंका है कि शायद फिर से वो इस मुद्दे को बहुत ठंडे बस्ते में रख दें या इसके साथ साथ वो जो फॉसिल फ्यूल के उत्पादन के और प्रोत्साहन करें और उसको बढ़ावा दें। लोगों को बहुत एक शंका है कि क्या अमेरिका उस तरीके से रह पाएगा या फिर से वो इसमें से अपनी पक्ष को वापस कर लेगा।
जी, यहाँ पर वाशने जी एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जैसे कि ट्रंप के बारे में आपने बताया, तो क्या ये सिर्फ अमेरिका का स्टैंड है कि यूरोप का भी है? क्योंकि सामान्य तौर पर जब भी हम पर्यावरण या इस तरह के मुद्दों की बात करते हैं तो विकसित और विकासशील देशों के बीच में एक द्वंद की बात होती है कि दोनों के इश्यूज अलग अलग हैं, क्या इस तरह की भी कोई समस्या है?
देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वहां पर जो इस वक्त डायनेमिक्स है वो ये था कि पहले जब बाइडेन साहब थे तो अमेरिका और यूरोप मिल करके चाइना के ऊपर दबाव डालने की पूरी संभावना रखते थे कि वो भी क्लाइमेट फंड के ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन दे, लेकिन चूंकि अब अमेरिका के स्टैंड क्लियर नहीं है और ज्यादातर ऐसी संभावना है कि शायद वो अब इसमें अपना योगदान न दें, तो अब यूरोप को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है जिसमें जर्मनी और बाकी के यूरोपियन देश मिल करके ये कोशिश करेंगे कि वो किस प्रकार से इस हमको आगे बढ़ा सकते हैं। यूरोपियन देश इसमें बहुत सक्रिय हैं और बहुत चाहते हैं। इसके साथ साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका भी बहुत भारी इसके अंदर इंटरेस्ट है और उनका बहुत महत्वपूर्ण एक इसमें विषय है। इसका कारण ये है कि जो डेवलपिंग देश हैं, जो कि प्रगतिशील देश हैं, उनके अंदर जो एक संभावना है उसकी वजह से जो गरीब मुल्क हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल साउथ, उन देशों के ऊपर इसका बहुत कुप्रभाव पड़ता है, जबकि उनका योगदान क्लाइमेट चेंज में और पर्यावरण परिवर्तन में नगण्य के बराबर है। तो इस चीज का जो एक डिस्प्लेसमेंट है और डिसइक्विलिब्रियम है, ये एक भारी भारी चिंता का विषय है।
जी, तो वाशना जी, जैसे आपने जिक्र किया ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का, तो क्या हम इसको ऐसा समझें कि ग्लोबल साउथ की तो चिंता है पर्यावरण को लेके, ग्लोबल नॉर्थ में भी है जैसे आपने जर्मनी का जिक्र किया, लेकिन ग्लोबल नॉर्थ में भी दो पक्ष उसके हो गए हैं विचारधारा के स्तर पर?
देखिए, ग्लोबल नॉर्थ में भी ये क्लाइमेट चेंज बड़ा प्रभावी रूप से अफेक्ट कर रहा है। जैसे अभी आपने देखा कि स्पेन में वेलेंसिया में जो बाढ़ आई है, ये अपने आप में एक बहुत ही भयंकर बाढ़ है और इससे पूरा देश दहल गया है और वहाँ की जो सरकार है उसमें और वहाँ की जो आम जनता है उसके अंदर इतना भारी रोष है। और हम देख रहे हैं कि कैलिफोर्निया में जो आग लगी हुई है जिससे मकान जल रहे हैं और सारे लोग अपने जगह से छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो इन सब चीजों को देखते ऑस्ट्रेलिया में जो आग लग रही है और हमारे देश में भी जो जंगलों में आग लगती है और हमने भी जो गर्मियों में देखा जिस तरीके से सूखा पड़ी है और जिस तरीके से बारिश ने अपना मिजाज बदला है और अपना उसका जो एक रिजीम है उसके अंदर जो परिवर्तन आया है, तो इन सब का हमारे आर्थिक, हमारे सामाजिक, हमारे औद्योगिक और मैं समझता हूं कि जितने भी पहलू सोचे जा सकते हैं सबके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और अगर इसी तरह की व्यवस्था चलती रही तो आगे चल के हालत और गंभीर होने वाले हैं।
बाकू अजरबैजान में COP 2029 सम्मेलन हो रहा है और इसमें भाग लेने के लिए टेरी की निदेशक सुरुचि भडवाल जी वहां पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं, उनसे जानते हैं सम्मेलन का हाल।
जो कॉप का फोकस है वो ऑफ कोर्स क्लाइमेट फाइनेंस पे रहेगा और क्लाइमेट फाइनेंस का रिक्वायरमेंट बोथ मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन के लिए, क्योंकि एज अ वर्ल्ड जबकि मिटिगेशन जो है उस पे हमें फोकस करना है, बट हम लोग इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज भी ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसकी वजह से अडेप्टेशन का फोकस भी हमें करना पड़ेगा एंड जो है एम्फसाइज करना पड़ेगा।
कॉप 2029 के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सुरुचि भडवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वासना जी, एक मैं भारत के संदर्भ में भी आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि इस पूरे संदर्भ में भारत का और भारत सरकार का क्या स्टैंड है और वो किस तरह से पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ ऐसा करना चाहे, क्योंकि जैसा आपने कहा कि भारत भी प्रभावित है, हम सभी लोग प्रभावित हैं, तो भारत के संदर्भ में क्या खास बात आप बताना
चाहेंगे? भारत के संबंध में ये है कि भारत ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का रोल निभाने के स्थिति में है और हमने पर्यावरण में मामले में बहुत सजग रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऊर्जा ट्रांजिशन के बारे में बहुत गहराई से सोचा गया है, नई नई पॉलिसियां बनाई गई हैं और ये सोचा गया है कि हम 500 गीगावाट बिजली रिन्यूएबल रिसोर्सेज से उत्पन्न करने में हम एक लक्ष्य रख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रोत्साहित करने वाला एक कदम है और एक लक्ष्य है। तो इस प्रकार से भारत ने सदैव लीडरशिप रोल में ग्लोबल साउथ की एक मैं समझता हूँ पहल भी की है
जी।
और उसके अंदर उनका ये कहना है कि जो भी वनरेबल कंट्रीज हैं जिनके अंदर के एक पर्यावरण का असर तो भारी है लेकिन उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और उनके पास में साधन भी नहीं है, उन सबके साथ में निर्णायक काम होना चाहिए, उनको एक एडॉप्टेशन फंड मिलना चाहिए और पर्यावरण से सुदृढ़ होने के लिए जिसको हम कहते हैं कि उनको हर तरीके से रेजिलिएंट बनाने के लिए एक हमें धन की आवश्यकता है। तो इसके लिए किस प्रकार से ये धन जुटाया जाएगा, कौन इसको देगा, किस तरीके से ये दिया जाएगा और क्या ये पूरे ईमानदारी से और पूरे खुलासेपन से सबको प्रेरित होगा, तो इन सब चीजों के बारे में हम बहुत सजग हैं और हम हमेशा से इसकी पहल करते रहे हैं ताकि जो गरीब मुल्क हैं और जो ग्लोबल साउथ है उनके जो भी इंटरेस्ट हैं और जो भी उनके फायदे में हो सकता है उसके बारे में हम आगे पेशकश करते हैं
जी। जैसा कि आपने पूरे विश्व के संदर्भ में पर्यावरण और परिवर्तन के से संबंधित बातें बताई, तो ऐसे में क्या आपको ये लगता है कि पर्यावरण को बचाने की जो मुहिम है और दूसरी तरफ जो आर्थिक विकास की पूरी जो दौड़ है, एक अंधी दौड़ है, क्या इनके बीच में कोई विरोधाभास की स्थिति है?
देखिए, इसके अंदर मैं समझता हूँ विकास और पर्यावरण में कोई विरोधाभास नहीं है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे, उसके बारे में सजग नहीं रहेंगे, तो जो नुकसान होता है खास तौर से मिल्कियत का, जमीन का और हमारे जीवन का और लोग बागों का, विस्थापित होते हैं और गरीबी बढ़ती है और इस सब का बड़ा भारी एक आर्थिक पहलू है जो कि पर्यावरण के रखरखाव की वजह से या उसमें कमी लाने से काफी कम हो सकता है। आगे इसका प्रकोप और बहुत बढ़ने वाला है और अगर यही हमारी पॉलिसी रही तो आगे जो समस्या होगी वो ऐसी होगी कि जो पेरिस एग्रीमेंट में हमने तय किया था, अपना लक्ष्य लगाया था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से विश्व का औसत तापमान जो औद्योगिक समय जब शुरू हुआ था उससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो आज की स्थिति को देखते हुए जैसा आज हो रहा है उससे लगता है कि हम दूनी गति से इसको बढ़ गए हैं और इस तरीके से अगर पॉलिसी चलती रही तो हमारा टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर करीब 3 डिग्री पार कर जाएगा। तो ये एक बहुत ही विषम समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है और इसका फिर कोई निदान नहीं है और हम इसके बारे में हमको चिंता अभी से करनी है। एक्चुअली टाइम इज रनिंग आउट, समय की कमी है और जो आवश्यकता है वो ये है कि तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन पिछले सालों को देखते हुए कि इसके अंदर लोग बात तो करते हैं लेकिन एक्शन के मामले में बहुत लचर हैं और उसमें वो पीछे रह जाते हैं। तो देयर इज ए बिग गैप बिटवीन एम्बिशन एंड एक्शन।
सुभाषना जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आपकी बात सुनने के बाद लोग ये समझेंगे कि पर्यावरण परिवर्तन से उनके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है और सरकारें जो करेंगी वो तो जरूरी है, हम लोग भी, हर व्यक्ति भी अगर इस बात को लेकर सजग होगा तो निश्चित रूप से जो मौजूदा स्थिति है उसमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे 29वें संयुक्त राष्ट्र वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद CK वार्ष्णेय, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।